السلام عليكم.
وعليكم السلام مولانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. آج اگست 2012 کی 22 تاریخ ہے. دیکھیے, کل مجھے ایک عجیب تجربہ ہوا اور احساس ہوا کہ قرآن میں تاریخی باتیں بتائی گئی ہیں, واقعتاً وہ مفصل ہے, وہ تفصیل لکل شے ہے, لیکن تفصیل کا طریقے اشارات ہے. یہ کل عجیب غریب ایک چیز سمجھ میں آئی کہ قرآن میں تفصیل کا طریقے اشارات ہے, یعنی غور فکر سے آپ جان سکتے ہیں, ترجمے سے نہیں جان سکتے. غور فکر سے آپ اشارات کو دریافت کرتے ہیں, چھپے ہوئے معنی تک پہنچتے ہیں, اور ترجمے سے تو لفظی مفہوم تک آپ کی پہنچ ہوتی ہے. تو کل ایسا ہوا کہ سر زکوان صاحب جب آئے 9 بجے, تو میں نے کہا کہ قرآن کے انڈیکس آئیے, تو یہ نکالی کہ لفظ قلیل قرآن میں کتنی بار استعمال ہوا ہے. تو قرآن کے انڈیکس میں اعتراض کیا انہوں نے, تو معلوم ہوا کہ قرآن میں لفظ قلیل 70 بار استعمال ہوا ہے, 70. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قلیل کا لفظ استعمال ہوا ہے شکر کے لیے, قلیل من عبادی الشکور, قلیل ما تشکرون, یعنی بہت کم ہیں شکر کرنے والے. یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, آپ سب حافظ ماشاء اللہ, کہ قلیل کا لفظ شکر کے لیے قرآن میں 1 سے زیادہ بار آیا ہے, اور شیطان نے بھی کہا تھا لا تجدو اکثرہم شاکرین. اچھا, اس کے بعد میں بھگوان صاحب سے کہا تلاش کیجیے کہ قلیل کا لفظ متقین کے لیے آیا کہ متقین بہت کم ہوں گے, تو متقین کے لیے ایک بار بھی نہیں آیا. یہ قلیل من عباد شکور تو بہت آیا, انواد طور پر آیا, لیکن قلیل من عباد المتقون ایک بار نہیں آیا. یا شیطان نے انڈی کا لا تجد اکثرہم متقین, نہیں اس نے کہا. یہ ایک بہت عجیب فرق ہے کہ قلت کا انتساب قرآن میں شاطر کے ساتھ ہے, متقین کے ساتھ نہیں. آپ لوگ خود بھی اس کو چیک کیجئے گا, یہ صحیح کہ نہیں, اسی میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں ایک بہت ہی عجیب چیز ہے کہ شکر کرنے والے بہت کم ہوں گے. یہ نہیں کہا کہ تقوی والے کم ہوں گے, تو یہ لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں. اب اس پر میں سوچنے لگا, تو ایک چیز یہ سمجھ آئی کہ قرآن میں دیکھے سورہ فاتحہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین, ہم کے معنی ہوتے ہیں شکر کے, حمد کی حقیقت شکر ہے. تو پھر میں نے زکوان صاحب کا حساب لگائیے کہ ہر مسلمان نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, چاہے فرض ہو, چاہے سنت ہو, چاہے نفل ہو, چاہے جہری نماز ہو یا غیر جہری نماز ہو. تو انہوں نے اندازہ لگا کے بتایا کہ ہر آدمی روزانہ تقریباً 100 بار پڑھتا ہے سورہ الفاتحہ, 5 نمازوں میں اور نوافل میں اور سنتوں میں ملا کر فرائض میں تقریباً 100 بار ہر آدمی. اچھا, اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک کلچر ہے الحمدللہ کہنے کا, چھینک آئی تو الحمدللہ, काम बन गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह ये रिवाज है, यहाँ से लेकर अमरीका तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा होगा, उसको भी शामिल कर लिए तो हर मुसलमान रोजाना 100 से ज्यादा बार कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का। तो मैंने सोचा कि ये जो सुबहानों में आ जाती है इसके लिहाज से कहा चाहिए था कुरान में कि कलीलुम मिन इबादे शकूर के बजाय कसीरुम मिन इबादे शकूर, क्योंकि सबसे ज्यादा तो इसी का इरादा किया था, इसी को रिपीट करते हैं लोग नमाज में, नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जहां भी जाइए मस्जिद से मगरिब तक, अरब से आजम तक, नमाज में और नमाज के बाहर खूब खूब कहते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो बज़ाहिर अगर यही है शुक्र तो मुसलमान करते हैं, तो कुरान की आयत तो होनी चाहिए थी कि वो कसीरु मिन इबादे शकूर, मेरे बंदों में शुक्र करने बहुत है। तो फिर मैं सोचने कहा कि आखिर मामला क्या है, तब भी समझ आया कि ये लफ्जी शुक्र अल्लाह को मतलूब ही नहीं है, दैट इज रिजेक्टेड, अल्लाह का कोई उसकी हकीकत ही नहीं है। आप एक बार कहिए, बिलियन बार कहिए, अल्लाह का उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मुसलमान जो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, चाहे नमाज में नमाज के बाहर बेसौरी के साथ बस कह देते हैं, वो नेमात इलाहिया का जो वफूर होता है उसके तहत जो उस कलम शुक्र निकलना चाहिए वो है ही नहीं, न अरब में न आजम में। इसलिए यह आया कि कलियों ने मेरा बाद शकूर, ये मतलब कि जो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते वो भी गैर शाकिर हैं, जो बजाय अल्हम्दुलिल्लाह कहते वो भी गैर शाकिर हैं। तो जो सबसे ज्यादा मफकूद जो चीज है वो यही है कि शाकिरीन नहीं है। तो अब तो शाकिरीन क्यों नहीं है, इसलिए कि शुक्र देखिए शुक्र खला में नहीं पैदा होता, नेमात इलाहिया के का गहरा एहसास जब हो गफूर के दर्जे में, तब आप कह पाते हैं खुदा तेरा शुक्र है, मतलूब शुक्र। जो मतलूब शुक्र है, मतलूब शुक्र जो है, मतलूब एतराफ खुदाबंदी जो है, वो बगैर गहरे एहसास नियामत के कभी पैदा नहीं हो सकता। ये बहुत ज्यादा अहम चीज है, तो आप लोगों को सोचना चाहिए। फिर मुझे एक आयत जो बहुत नमाजों में भी तलावत में भी बार बार सामने आई, लेकिन उसकी मानवियत मुझे एक नई मानवियत आई उसके अंदर। अब जानते हैं सूरह अल मारिज में इंसान के बारे में, फैजा मसहुल खैर मनुआ। तो यह आयत आप सब लोगों ने हजारों बार सुनी होगी, तस्वीरों में मैंने देखा, तस्वीरों में इसमें कोई कुछ भी नहीं, परंतु जो मानवियत है वो तस्वीरों में मुझे मिली नहीं। इसके अंदर बहुत ही बड़ी बात कही गई है, वो पूरी तारीख इंसानी एक्सप्लेन होती है, और ये पूरी ये बात एक्सप्लेन होती है क्यों क्यों मुत्तकीन बहुत है और शाकिरीन बहुत ही कम है, ये सब उसके अंदर एक्सप्लेन होता है। इस आयत में का लफ्जी तर्जमा यह है कि आदमी को जब शर पहुंचता है, यानी कोई तकलीफ, शर से मुराद यहाँ इविल नहीं, शर से मुराद है तकलीफ, जो तकलीफ पहुंचती है तो वो घबरा उठता है, जजू जजू बन जाता है, जजू का मतलब बहुत घबरा जाने वाला, परेशान हो जाने वाला। तो कोई मादी तकलीफ उसको पहुंचती है, कोई तकलीफ उसको पहुंचती है तो वो बहुत जल्द घबरा उठता है। अच्छा, उसके बस वैसा बस सोल खैर मनुआ, और जब उसको कोई फायदा पहुंचता है, कुछ पैसा आता है, माल दौलत आता है, दुनिया की आसाइश आती है, तो वो मदऊ बन जाता है। मदऊ मतलब रोकने वाला, यानी बखील, यानी बखील बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर सोचते हुए बहुत जबरदस्त एक नफसियाती हकीकत सामने आई। वो क्या है, इंसान एक अजीब व गरीब मखलूक है जो सारे उससे अलग है, सारे दूसरे मखलूकात से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, चाहे मादी हो या नबाताती हो या हैवानी हो, जो मखलूकात सबसे मुकम्मल तौर पर एक अलग मखलूक है, मुकम्मल तौर पर एक अलग मखलूक है। आप लोग खुद अपने तजर्बे सोचिए और दूसरों के तजर्बे से गुजर में लाइए। देखिए, इंसान का मामला यह है कि एक है तकलीफ, एक है आराम। तो तकलीफ जो है, अगर एक सुई भी चुभा दी जाए तो आदमी बेचैन हो जाएगा, एक सुई चुभा दी जाए, छुरी का जख्म लग जाए, यानी छोटी सी तकलीफ हो तब भी आदमी बेचैन हो जाता है, आंख में एक जर्रा पड़ जाए तो बेचैन हो जाता है। लेकिन आराम का मामला है कि जितने ही ज्यादा आराम मिले उसको, लेकिन उसको खुशी नहीं होती, खुशी नहीं होती उसको। क्या आम तजर्बा है, चाहे बादशाह हो, चाहे दौलतमंद हो, तालीम याफ्ता हो, चाहे लोग कोई भी, तो मनु क्यों बनता है, बनता है वो, और जदू क्यों बनता है। जदू इसलिए बनता है कि ज्यादा तकलीफ भी परेशान कर देती है उसको। ज्यादा तकलीफ हुई लगा, यानी पेचन पचन हो गया और लगा घबराने लगा, और अगर उसको कुछ खैर मिला तो रोकने वाला बन गया, क्योंकि उसको लगता है कि अभी मुझे तो और चाहिए, मैं इसको दे कर दूँ। अल्लाह को तकासुर, ये तकासुर इंसान की नफ्सियात में शामिल है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो चूंकि जो मिलता है उसको उसको कम लगता है, इस वजह से तकासुर नफ्सियात आती है और मदहू की नफ्सियात आती है। तो उसके जहन में अभी तो मुझे और चाहिए, मैं देख कैसे दे दूं लोगों को। तो एक तरफ जदूज बन जाता है, क्योंकि तो तकलीफ का अदना कोई तजर्बा भी उसको परेशान कर देता है, और आराम में मदहू को बन जाता है, उसको हर हर आराम कम लगता है। अब इसको और सोचिए, और सोचते सोचते मैं यहाँ तक पहुंचा कि नफ्सियात कहती है, इंसान की नफ्सियात का मतलब, इंसान जो है बहुत जबरदस्त किस्म का परफेक्शनिस्ट है, बहुत ही आला दर्जे का परफेक्शनिस्ट। उसको लेस देन परफेक्शन कोई चीज एक्सेप्ट ही नहीं होती, यानी एक मुल्क उसके कब्जे में होता दो मुल्क कब्जा करना चाहेगा, 1 करोड़ रुपए उसको उसके पास हो तो मिलियन चाहेगा, वो एक कार हो तो 2 कार चाहेगा, बड़ा घर हो तो बड़ा घर चाहेगा। ये इंसान के मिजाज है कि वो कहा जाता है कि मैन इज अ परफेक्शन सीकिंग एनिमल, यानी आखिरी हद दर्जे में परफेक्शनिस्ट। वो चाहता है कि मुझे कुछ भी तकलीफ मुझे ना हो, तो सारा आराम उसको मिले। ये नफ्सियात इंसानी है, इसका आप में हर शख्स सोच सोच सकता है, हर शख्स सोच सकता है कि आप ज्यादा तजर्बे से समझ सकता है इस आदमी को, और तारीख के जो वाकत रिकॉर्ड हुए हैं उनको पढ़कर आप समझ सकते हैं। इंसान अपना अला दर्जे का मियार पसंद या प्रोफेशनलिस्ट होने के बना पर अदना दर्जे में भी तकलीफ गवारा नहीं करता, और बड़ी बड़ी जो कामयाबी है उस पर खुश नहीं होता वो, क्योंकि तो और सहाने का मजाक बाकी रहता है उसका। इन सब बातों को जो आप सामने रखेंगे तब जाकर वो चीज कोशिश समझ में आती है कि तुम मुत्तकी बहुत से हैं और शाकिर बहुत ही कम। सारी तारीख में कोई बड़े दर्जे का शाकिर कोई शायद नजर ही नहीं आता, क्योंकि ड्यू टू नेचर ऑफ परफेक्शनिज्म, नेचर ऑफ परफेक्शन, जो नेचर आदमी का है, जो फितरत है परफेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि आदमी ओवरकम नहीं कर पाता, ओवरकम नहीं कर पाता। तो मुत्तकी को बनता है आदमी कि हर मामूली तजुर्बा शर का उसको घबरा देता है, वो तो सोचता है कि भाई मैं जहन्नम में ना डाल दिया जाऊं, अल्लाह के पकड़ में ना आ जाऊं। तो मामूली तजुर्बा भी उसको जहन्नम की आग जलाने काफी होता है, जो ईमान वाले लोग हैं, मामूली तजुर्बा भी, कोई भी आंख में जर्रा पड़ जाए, सुई चुभ जाए, कहीं छुरी का जख्म लग जाए, या आप फिसल करके गिर पड़े, कोई भी तजुर्बा आपको फिलफोर बेचैनी में डाल देता है, फिलफोर। तो अगर आपके अंदर ईमानी एहसास है तो फौरन आप सोचेंगे कि अरे भाई ये जहन्नम कितनी बड़ी मुसीबत होगी, तो अल्लाह के पकड़ से अपने आप को बचाने का मिजाज जो है वो छोटा तजर्बा भी काफी हो जाता है, तो मिजाज पैदा हो। मामूली तजर्बा तकलीफ का, मामूली तजर्बा शर का, तो लाजमन हर आदमी को रोजाना होता रहता है, रोजाना रोजाना होता रहता है। तो उससे जो भी ईमान वाला जो आखिरत पे ईमान रखता है वो फौरन उसका जन्म मुंतकल होता है, जिसे हदीस में जहन्नम, तो एक लू चली, आप गर्मी पहुंची तो आपका एहसास जागा। तो अगर आपको ईमान बिलाखर है आपके अंदर, मुनकरीन की बात मैं नहीं करता हूँ, ईमान बिलाखर अगर आपके अंदर है तो फौरन आप सोचेंगे फिर भी दुनिया की गर्मी इतनी तकलीफ दे है तो जन्नत में गर्मी की तकलीफ दे होगी। तो बरबराए परफेक्शनिज्म, बरबराए परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट होने की बना पर हर तकलीफ जो रोजाना ही आदमी को होती रहती है, क्योंकि दुनिया दारुल कबद है, कल इंसान की कबद, क्योंकि दुनिया दारुल कबद है, यहाँ तकलीफ का तजुर्बा पेश आने आना है। जैसे अभी एक आप यूपी हमारे इंडिया में सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे बड़ी स्टेट है, यूपी का चीफ मिनिस्टर बन गया एक आदमी जिसका नाम है अखिलेश यादव, अभी वो नौजवान है। तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उसका बहुत तफसीली इंटरव्यू छपा टाइम्स ऑफ इंडिया में। इंटरव्यूअर ने आखिर में उससे पूछा कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आपको ने सबसे ज्यादा क्या जो मिस किया आपने, तो फौरन उसने कहा कि आजादी। चीफ मिनिस्टर बनकर भी उसको बहुत सोचा कि हमें पूरे एक स्टेट जो यूरोप के कई मुल्कों से बड़ी है, वो यूपी, उसका वो चीफ मिनिस्टर बन गया, लेकिन लगता है कि वो सब कुछ कुछ नहीं मिला, सब कुछ नहीं मिला उसको, कार मिल गई, बंगला मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, लेकिन फिर भी आज़ादी छिन गई, आज़ादी नहीं है मुझे, हर वक्त कोई मिलने आ रहा है, हर वक्त कोई टेलीफोन आ रहा है, हर वक्त कोई प्रॉब्लम है, हर वक्त एक ना एक मसला सामने है, सोने का वक्त नहीं, खाने का वक्त नहीं। तो चीफ मिनिस्टर बनकर भी उसको लगा कि मुझे एक चीज तो छिन गई मेरी, जो मुझे हासिल थी आजादी। तो जो कि आदमी परफेक्शनिस्ट है आला तरीन माने में, तो मामूली तकलीफ भी उसको एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो गवारा नहीं होती। अच्छा, दूसरी तरफ उसी परफेक्शनिस्ट होने के बना पर दूसरी बात क्या होती है, कितनी आराम मिल जाए वो कम लगता है उसको, तो वो तो टोटल फुलफिलमेंट चाहता है, तो सिर्फ जन्नत में मिलेगा, दुनिया में तो मिलने वाला नहीं है, दुनिया में तो लिमिटेशंस हैं, यहाँ पर डिसएडवांटेज है, हर चीज लिमिटेड है, हर चीज लिमिटेड है, यहाँ हमारी हमारी जो एंजॉयमेंट की कैपेसिटी वो भी लिमिटेड है। तो कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी लगता है कि जो उसकी चाहत थी, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, उससे वो कम है, हर हाल में उसको कम लगता है वो। तो एक तरफ यहाँ इंसान का कि तकलीफ कम बहुत ही कम हो तब भी बेचैन हो जाता है, और आराम बहुत ज्यादा हो तब भी उसको खुशी नहीं होती। यह है वो चीज जिसकी वजह से आदमी काकर नहीं बन पाता, लेकिन मुत्तकी बन जाता है। मुत्तकी बनने के लिए रोजाना का तजुर्बा ही काफी है। जैसे मैं चाय आपने दिया तो वो गर्म गर्म चाय थी, उठाया मैं तो गिर गई मेरे ऊपर, अब वो मेरे चल गया मेरा जिसमें जहाँ गिरी थी, तो अचानक एहसास हुआ कि देखो चाय के पानी जो है उससे मैं इतनी तकलीफ मुझे होगी गर्म पानी से, तो जहन्नम की का जो गर्म पानी होगा तो कुरान में बताया गया है वो तो इससे बिलियन टाइम ज्यादा होगा। तो हर लम्हा आपको तजर्बा कराता है तकलीफ का, और तकलीफ तजर्बा आपको जहन्नम की याद दिलाता है अगर आप आखिरत पर ईमान रखते हो तो। ये मोमिन आखिरत की बात है, ये मोमिन आखिरत बहुत आसानी से मुत्तकी बन जाते हैं, लेकिन चाहते बनने के लिए उनको वो तजर्बे ही नहीं गुजरता कि वो साकिर बनने का तजर्बा ही हासिल नहीं होता, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है फुलफिलमेंट नहीं है, कमी का एहसास होता है, हमेशा कमी का एहसास। अब बादशाह बन जाए तब भी, दौलतमंद हो तब भी, अभी बिल गेट जो दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी है, पैसे की अफरात तो उसको, लेकिन वो पैसा उसको मशहूर बन गया, उसने अपने अपने पैसे का बड़ा हिस्सा उसमें दे दिया, वेलफेयर खरात के कामों में दे दिया, ये पैसा उसको मुसीबत लगने लगा। इतने मसाइल इतने मसाइल, तो ये राज है कि आदमी शाकिर बन नहीं पाता तो मुत्तकी बन जाते हैं लोग। अब यहाँ पर देखिए, शुक्र करने वालों को क्यों बड़ा दर्जा है आखिरत में? आखिरत में जो जन्नतुल फिरदौस है, जो आला मकामात जन्नत है, वो मिलेंगे किन लोगों को? शाकिरीन को, मुत्तकीन को भी मिलेगा, लेकिन दर्जे आला आला तरीन जो दर्जा है जन्नत का वो है शाकिरीन के लिए। तो क्यों? मुत्तकी बनने के लिए आप निस्बतन कम दर्जे की का तफक्कुर दरकार है, कम दर्जे की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी दरकार है। बनने के लिए कम दर्जे की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी दरकार, क्योंकि वो बिलफेल एक तजुर्बा हो रहा है आपको, इस चाय का गर्म पानी मिल गया तभी तकलीफ हो रही है आपको, हाथ में कोई जरा चले गया तब भी तकलीफ हो रही है, आप फिर गिर गए तब भी तकलीफ हो रही है। तो जहन्नम की याद दिलाने के लिए मुसलसल आपको तजुर्बात होते रहते हैं। अगर आपके अंदर आखिरत का यकीन है तो बहुत जल्द आप मुत्तकी बन जाएंगे, लेकिन शाकिर बनने के लिए तो वो तो तजर्बे नहीं गुजरता, बहुत सोचना है आपको, सोच करके शाकिर बनना है, और मुत्तकी बनने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, मुत्तकी बनने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। शाकिर बनने के लिए आपको कम एहसास नियमत पर ज्यादा बड़े दर्जे मुनीम को दरियाफ्त करना है। ये मुनीम जो है अल्लाह ताला, वो सब कुछ देने की ताकत उसके पास है, लेकिन वो सब ताकत दे रखा हो जन्नत में, दुनिया में तो दिया ही नहीं, दुनिया में तो कम दिया है। तो कम दर्जे नियमत पर आला दर्जे के मुनीम को दरियाफ्त करना कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। ये मिले आपको सिर्फ 1,000 मुनीम से, और आप तस्वुर करें कि मुनीम को तो बिलियन ट्रिलियन उसके खजाने में है, उस दर्जे में आप उसका एतराफ करें, यानी पाए आप 1,000 और एतराफ का सबूत दे आप बिलियन ट्रिलियन के दर्जे में, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। यह है राज कि क्यों ऐसा है कि चाकिर बहुत ही कम है, मुत्तकी बहुत ज्यादा है। यह ऐसी बात नहीं जो मैं कह रहा हूँ, कोई शारी बात नहीं, आप में सर शख्स ताजी तजुर्बे से आप जान सकता हो इस बात को। ये मामूली तकलीफ भी आपको बेचैन कर देगी, लेकिन आराम जो है कितने मिले, थोड़ी देर में आप बोर रहते हैं, थोड़ी देर बोर रहते हैं आप। इसके माने है कि यानी इसके माने है कि उस अल्लाह का तसव्वुर करने के लिए जो अल्लाह मुंतकिम है, हर लम्हा आपको तजर्बा हो रहा है, जो तजर्बा हो रहा है वही काफी है कि आप अल्लाह को कि मुंतकिम वाली हैसियत को दरियाफ्त कर सकें। लेकिन अल्लाह के मुनिम वाला जो हैसियत है अल्लाह ताला की, उसको तसव्वुराती सतह पर दरियाफ्त करना पड़ता है आपको, तसव्वुराती सतह पर। यानी यूं कहूंगा कि मैं कि अल्लाह के मुंतकिब होने को आप तजर्बाती सतह पर दरियाफ्त कर लेते हैं, कि अल्लाह के मुनि होने को आप तसव्वुराती सतह पर दरियाफ्त करना पड़ता है आपको। इसको समझिए आप लोग कि अल्लाह एक एतबार से मुंतकिब है, एक एतबार से वो मुनिम है, दोनों है, मुहासिब भी है मुजाजिब भी है, वो तो मुनिम भी है मुंतकिम भी है। तो अल्लाह के वो सिफत जिसको मुंतकिम होना कहा जाता है, उसकी दरियाफ्त आपको ज्यादा तजर्बे से हो जाती है, ज्यादा तजर्बे से। लेकिन अल्लाह की वो सिफत जो मुनीम वाली है, उसको तसव्वुराती सतह पर आपको दरियाफ्त के दर्जे में जानना पड़ता है। यानी दूसरे लफ्जों में ये जगह मिले हुए पर एक चीज का मानना, एक न मिले हुए पर मानना, कैसी अजीब ही चीज है। यहां पर मैं एक चीज याद आ रही है मुझे, इंसान के बारे में एक किताब मैंने पढ़ी थी, कि इंसान की सिफत इम्तियाजी क्या है, यानी दूसरे के मुकाबले में, दूसरी मखलूकात के मुकाबले में इंसान की सिफत इम्तियाजी क्या है। तो पहले कहा जाता था कि इंसान नातिक है, इंसान हैवान नातिक है। इस जमाने में ये नहीं कहा जाता कि मालूम है कि नातिक तो मछलियां और हवानात भी होते हैं। तो पहले जमाने में इंसान की तारीफ की जाती थी कि इंसान हवाए नातिक है, अब ये तारीफ नाकाफी हो गई है। अब जो तारीफ जदीद जो तारीफ है वो ये है इंसान के बारे में कि इंसान के अंदर कंसेप्चुअल थॉट की सलाहियत है। क्या माना जाता है? इंसान के अंदर कंसेप्चुअल थॉट की सलाहियत है, यानी तसव्वुराती तसव्वुराती फिक्र की सलाहियत है, तसव्वुर करके किसी चीज को इल्म में लाना, कंसेप्चुअल थॉट। तो गोया के अल्लाह ताला जो शुक्र आला मतलूब है, उसके लिए अल्लाह ताला ने पेशगी आपको इस राय दे दी है, कंसेप्चुअल यानी जो शुक्र आला है वो कंसेप्चुअल थॉट के दर्जे में हासिल होता है किसी को, प्रैक्टिकल तजर्बे के दर्जे में हासिल नहीं होता। क्योंकि आला जो है अल्लाह ताला का एतराफ आला, तो आला दर्जे का अफजालिजमेंट, वो कंसेप्चुअल थॉट के दर्जे में हासिल होता है। और अल्लाह ताला ने आपको पैदा कर रखा है इसी सलाहियत के साथ, यानी हैवान के अंदर ये चीज नहीं है, और दरख्तों और पहाड़ों समुद्रों में तो यार बिल्कुल नहीं है। कंसेप्चुअल थॉट की सलाहियत सिर्फ इंसान में है, तसव्वुर करके किसी चीज को जानना। बस आप लोग दूसरे मकाम पर बैठे हुए हैं, वहां तसव्वुर करके आप जान सकते होंगे, तो मैं एक कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरे हाथ में टेलीफोन का रिसीवर है, और C29 निजामुद्दीन वेस्ट के कमरे में बोल रहा हूँ, या आप तसव्वुर करके वहां जान लेंगे। لیکن کوئی ہوا نہیں کر سکتا ایسا. تصور کر کے ہوا نہیں جان سکتا کسی بات کو. حیوان سے اسی کو جانتا ہے جو براہ راست تجربہ کرے, جس کا براہ راست مشاہدہ کر رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ کو جو اعلیٰ ایمان مطلوب ہے, اس اعلیٰ ایمان کی صلاحیت بھی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ کیسی عجیب نعمت ہے, مزید نعمت مزید ہے یہ, کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ آپ کنسپچول پارٹ جو آپ کے اندر ہے اس صلاحیت کو ایکٹیو کر کے دریافت کریں اللہ کے انعامات کو, اللہ کی جنت کو, اللہ کی بلیسنگ کو. یہ بالفعل نہ ملی ہوئی ہے, نہیں ملی ہے تب بھی اس کو تصور دریافت کر سکیں. تو بہت اونچے درجے کا اکنالجمنٹ آئے گا, بہت اونچے درجے کا شکر آئے گا, بہت اونچے درجے کا آپ کے اندر اعتراف آئے گا. تو یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے, یعنی سب سے بڑا جہاد ہے یہ, یعنی جہاد فکر ہی کرنا پڑتا ہے اس کو. یعنی متقی بننا ہوتا ہے تجربہ عملی کی سطح پر, متقی بننا ممکن ہو جاتا ہے تجربہ عملی کی سطح پر. اعلیٰ درجے کا صدر اس وقت بنتا ہے آدمی جب اس کو فکری جہاد کر سکے, وہ فکری جہاد, سپر جہاد. تو یہ راز ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ تاریخ میں متقی کثرت سے ہیں, لیکن شاکر تو ریئرسٹ امنگ دا ریئر. یہ شاکر کے جو شاکر افراد جو ہیں وہ ریئرسٹ امنگ دا ریئر ہیں. تو کل جب یہ بات دیکھی میں نے قرآن مجید میں کہ قلیل کا لفظ 70 بار استعمال ہوا ہے, لیکن قلیل کا لفظ شکر کے لیے ہے, متقی کے لیے نہیں. یہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں بہت قلیل ہیں شکر کرنے والے, یہ نہیں فرمایا کہ بہت قلیل ہیں تقبہ کرنے والے. تو اس کو کہتے ہیں کہ یعنی وہ تقابل کر کے باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اور رف الشیا بے ان کمپیرزن دیٹ یو انڈرسٹینڈ. تو میں نے تقابل کیا, تب سمجھ آئے کہ یہ قرآن میں یہ فرق کیوں ہے. قرآن میں یہ فرق کیوں ہے کہ فرمایا کہ شکر کرنے والے قلیل ہیں, یہ نہیں فرمایا کہ تقوی کرنے والے قلیل ہیں. کیونکہ تقوی جو ہے وہ کمتر درجے کے عمل پر تقوی کا حصول ممکن ہو جاتا ہے, لیکن جو شکر اعلیٰ جو ہے وہ تو ہمارے عمل درکار ہے. اس کے لیے بہت ہی بڑا عمل درکار ہے, تب وہ اعلیٰ درجے کا شکر حاصل ہوتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں آج جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں. آپ لوگوں کو میں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں. آپ کا جو گروپ تیار ہوا ہے اس میں میں باسط صاحب کو شامل کرتا ہوں. یہ 7 افراد کا گروپ بنتا ہے باسط صاحب کو لے کر کے. میں ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں, اور اسی لیے میں آپ لوگوں سے یعنی بات کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے, اور آپ سے میں بہت امید قائم کی ہوئی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام آپ کے ذریعے انجام پائے گا انشاءاللہ دعوتی مشن کے راہ میں. اور ساری دنیا جو ہے غفلت, انکار اور بے خبری کا جنگل بنی ہوئی ہے ساری دنیا, علماء ہو یا غیر علماء ہو, کوئی بھی ہو, غفلت, سرکشی, انکار کا جنگل بنی ہوئی ہے. اس میں آپ یہ 7 آدمی مجھے بہت قیمتی نظر آتے ہیں. آپ کے ساتھ کے پیچھے اور بہت سارے لوگ ہیں ماشاء اللہ, اس مشن میں دنیا بھر لوگ جڑ گئے ہیں. اسے آپ سے جو باتیں ہوتی ہیں تو امریکہ میں خواجہ قلم الدین صاحب تک پہنچتی ہیں, ये कम्युनिकेशन ये आप लोग रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके उनको भेजते हैं, मगर इसकी आप सफर करके अमरीका जाए, ऐसी अजीब बात है। यदि आपने मेरी बातों को रिकॉर्ड किया तो आपको सफर करके अमेरिका जाना नहीं है, बल्कि आप एक बटन दबाते हैं और सारी बात अमेरिका पहुंच जाती है, फिर वहां उसको लोगों तक एडवांस सर्कुलेट करते हैं, यहाँ नगमा सर्कुलेट करती है। ये सारा आलमी निजाम जो है मुतहरिक है आपके पीछे, आपके लिए। तो आप ये सोचिए कि सारे आलमी इनकलाबात इसलिए हुए कि मैं आप बस हर शख्स सोचे कि मेरे लिए इनकलाबात लाए गए, मेरे लिए ये प्रोसेस जारी हुआ, मेरे लिए दरियाफ्तें हुई, मेरे लिए एक नया दौर आया, तब शुक्र अजीम आएगा आपके अंदर और तब उसके बाद ईमान अजीम आपके अंदर आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
इस मौजू पर उलमा ने अपने तासुरात जाहिर किए हैं। उन्होंने बहुत दिनों से सवाल था जहन में कि खुदा को बहैसियत मुंतखिम जानेंगे तो हुब्बे शदीद कैसे होगा।
अच्छा
तो कल ही कई चीजें वाजी हुई मौलाना, कि बतौर मुनीम जानना है तब जाके हुब्बे शदीद पैदा होगा अल्लाह से। और दूसरी एक बहुत थ्रिल की बात ये थी कि यानी इस दुनिया में कम दर्जे की नेमत पर कामिल दर्जे के मुनीम का एतराफ, तो यही असल इस दुनिया में इम्तिहान है। तो वलदैना मजीद और लिल्लदीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, इसकी एक जबरदस्त तौजीह समझ में आई मौलाना।
हाँ, यानी अमली तौर पर कम मिलेगा लेकिन
जी
तस्वरी तौर तस्वराती तौर पर ज्यादा ज्यादा आपको मानना है।
हाँ मौलाना,
ये बहुत अजीब गरीब किस्म का एक जान है कि
अजीब ना।
अमली तौर पर कम मिला हुआ लेकिन
जी
तस्वराती तौर पर बड़ा एतराफ करना है आपको,
सही बात है,
ये तो बड़ा एतराफ मजीद है।
सही सही हुआ।
ये बात पकड़ी आपने,
हाँ मौलाना,
आमली तौर पर कम मिला है फिर भी तसवारी तौर पर ज्यादा बड़ा एतराफ,
सही मौलाना,
ये वो लोग हैं जो बहादुर जा पाएंगे
जी,
आखिरत में।
सही मौलाना।
इस बात को पकड़ लिया आपने कि नहीं पकड़ा?
पकड़ा मौलाना कि अमली तौर पे कम मिला हुआ है तो तसव्वुराती तौर पे मजीद की नफ्सियात रहना है,
हाँ,
तब जाके
तो फिर बहुत जन्नत मिलेगी। ला अनु रात वाला हजूर समय
जी, सही बात
देखी
जी, बिल्कुल ना, तभी
हुई कम होगी तब
जी
जाकर वो चीज मिलेगी जो आपने देखा नहीं था।
जी 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 बिल्कुल सही बात,
ये बात पकड़ लिया आपने,
पकड़ लिया ना।
माशाल्लाह। और कौन सा है? वालेकुम
सर, सलाम वालेकुम।
सलाम।
सुना वो जो सूरह नहल में एक आयत, सूरह लुकमान में एक आयत सुना ना, जो अस्बाह अलैक कानहु ज़ाहिरतन व बातिन, सुना उस सूरह
क्या
में
क्या
आता
ऐसा
है
है क्या ऐसा है?
वो अस्बाह अलैक नियामहु ज़ाहिरतन व बातिन,
हाँ
उस पर सोचते हुए एक बात समझ में आई
हाँ
कि जाहिरी नेमतों के समंदर बह रहे हैं इसी तरह बातिनी नेमतों के भी समंदर बह रहे हैं,
हाँ
लेकिन उसको डिस्टोर करना पड़ता है, जाहिर नेमतें तो दिखाई देती है
हाँ
मगर बातिनी नेमतों का इसबाक दिखाई नहीं देते, इसलिए आदमी को कहीं जद्दोजहद करनी पड़ती है।
हाँ जी, सही बात है, सही बात है। हाँ
वो ना वो पेपर में एक रिपोर्ट आई है कि ये जो जितनी भी वायरलेस कम्युनिकेशन की कंपनियां हैं, मोबाइल फोन है, नेट है वगैरह है, तो उन लोगों को एक बहुत बड़ा मसला पेश आया है अभी से 2 माह से कि
हाँ
हवाओं के अंदर जो है जो वेव्स होती हैं, मौजें जो होती है हवाओं में जो कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करती है इधर से उधर,
हाँ
उनमें कुछ तब्दीली आई है।
अच्छा
तो तब्दीली आने की वजह से मौलाना वो ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा उनके डिवाइस जो है वो नाकारा हो चुके हैं और करोड़ों रुपए का जो है उनको फिर नए डिवाइसेस लगाने हैं।
अच्छा
صرف اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ایئر ویوز ہیں اس میں یہ آ گئی ہے, تبدیلی آ گئی ہے.
اس میں تبدیلی آئی ہے
ایئر ویوز میں, ہوائی موجیں جو ہواؤں کے اندر جو موجیں ہوتی ہیں الیکٹرو میگنیٹک.
ہاں ہاں اچھا,
تو اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے وہاں.
اچھا اچھا,
تو ووڈا فون کمپنی نے لکھا ہے وہاں نا کہ 10,000 کروڑ روپے اس کو اب کیا ہے دوبارہ پھر انویسٹ کرنے ہیں. تو وہاں اس کو لے کر میں سوچ رہا تھا یہی وہ باطنی قیمت کا ایک پہلو ہے یہ, کہ ہواؤں کے اندر یہ پہلو موجود تھا لیکن جدید انسان نے اس کو ڈسکور کیا, ابھی انسان کو پتا نہیں تھا.
اور کون سا ہے؟
اسرار بول رہا ہوں. جو نا کل آپ کی بات سنی, بات میں ایک تجزیہ کر رہا تھا کہ جو علماء اور غیر علماء کی مجلسوں میں رہتے تھے, ان مجلسوں میں شر کا اور اندیشوں کا خطرات کا تو بہت زیادہ ذکر رہتا تھا ان کا, لیکن کہیں بھی نعمتوں کا ذکر نہیں ہوتا تھا. اور میرا بھی خود معاملہ یہ تھا کہ میں خود نعمتوں کو فکر نہیں کرتا تھا. کل یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں شاکر بننے کے لیے بہت بڑا فکری جہاد کرنا پڑتا ہے. تو ذراتی سطح پر نعمتوں کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے تبھی جا کر شاکر بن سکتا ہے, اور یہ تو کوئی نہیں کر رہا. میں دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آ رہا نا کہ اسرائیل کو اللہ بار بار یہ کہتا ہے اسکرو نعمت اللہ علیکم, اسکرو نعمت اللہ علیکم, تو وہی بات ہمارے لیے بھی ہے مولانا کہ ہم تصوراتی سطح پر نعمتوں کو ڈسکور بنے تاکہ ہم اس کے صحیح شاکر بن سکیں.
اور کون سا ہے؟
جی میں بات کر رہا ہوں.
جی بھائی
مولانا کل جو آپ نے بتایا اس میں اذا مسہ الخیر منوعا, یہ انسان نفسیاتی اعتبار سے پرفیکشنسٹ ہونے کی وجہ سے یہ انسانوں کا عام مزاج ہے, لیکن اذا مسہ الخیر شکورا بننے کے لیے تو تجرباتی سطح سے اوپر اٹھ کر کے تصوراتی سطح پر دریافت کرنا پڑتا ہے خدا کی نعمتوں کو. تو مولانا یہ اسی کو جو ہے قرآن میں یہ کل ہی یہ بات سمجھ میں ہونا کہ ایمان بالغیب کیا ہے. یہ ایمان بالغیب یہ ہے کہ تجرباتی سطح سے بلند ہو کر کے تصوراتی سطح پر دریافت کرے خدا کو.
اسی